जिन चीज़ों पर अमल शुरू हो जाता है फिर वो कापियों और किताबों से नहीं बल्कि दिल और दिमाग के अंदर से ढूंढनी पड़ती हैं। तभी तक हम 10 मुख्तलिफ सोचें ले चुके हैं, इंशाल्लाह आज हम अगली पे चलेंगे। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। खुद को सरबुलंद करने के लिए और अपने आप को ज़िंदगी से हमाहंग करने के लिए हम जो मौजू कर रहे हैं वो है सोचों पे पहरे, और इसमें अभी तक हम 10 मुख्तलिफ सोचें देख चुके। दोहरा देती हूँ अपने भी लिए और आपके लिए भी कि क्या मैं वाकई 10 चीज़ों पे अमल कर चुकी हूँ 11वीं सुनने से पहले। खुलासा क्या है कि बाज़ दफ़ा हम अपनी सोचों ही सोचों में कहीं के कहीं पहुँच चुके होते हैं। कोई सोचता है कि हम उसके साथ बैठे हैं लेकिन हम उस वक़्त कहीं और होते हैं। तो पहली हमारी दुश्मन सोच है दूसरों के बारे में मफरूज़े कायम कर लेना, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी गवाही के ख़ुद से ही सोच लेते हैं फ़लाँ ने ये किया होगा, फ़लाँ ऐसा होगा, मेरी बात तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी, मैं तो गलतियाँ ही करती हूँ। फिर दूसरी सोच हमने देखी थी कि हम बात का भतंगड़ बहुत बनाते हैं, छोटी बात होती है उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, और इसी तरह ज़िंदगी में पेश आने वाले किसी छोटे से वाक़े को बुनियाद बनाकर ये सोच लेते हैं कि अब हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, हम कभी खुश नहीं रहेंगे। फिर तीसरी चीज़ हमने देखी थी और वो क्या है, चाहिए ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे हों, तो इसको हमने क्या सोचा था कि मैं करूँगी, यस आई विल डू, मुझे वज़न कम करना है, मुझे दोस्त बनाने हैं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, गुस्से पे काबू। तो चाहिए को हूँ या होने में बदलना, ये एक इंसान की कामयाबी के लिए बहुत ही अहम होता है। फिर इसी तरह हमने चौथी चीज़ देखी थी, लेबल लगाना। कुछ लोग बड़े माहिर होते हैं खुद पर भी लेबल लगाने के और दूसरों पे, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं हारी हुई हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं, मैं बुज़दिल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, दिस एंड दैट। और आखिर एक इंसान पे ये सोच लेता है कि मैं तो बोझ हूँ, बस अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। तो ऐसा शख्स कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिसके अपने अंदर जुर्रत ही नहीं है। आप खुद से ही नहीं जीत रहे तो दूसरों से कैसे जीतेंगे। फिर पांचवी सोच हमने देखी थी, तारीफ की तरदीद। कोई आपकी तारीफ करे तो बस शर्मिंदा हो जाए, आप उसको झूठा कर देंगे, नहीं 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 ये तो आप कर ही नहीं है, ये गलत कह रहे हैं आप, मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, मैं कहाँ इस लायक। तो जो बंदा अपनी तारीफ सुनने को ही कबूल नहीं है फिर वो तारीफ हासिल करने वाले काम कैसे करेगा। फिर इसी तरह से छठी चीज हमने देखी थी, मिस्टर परफेक्ट, खुद को परफेक्ट करना। जब सब अच्छे हालात होंगे फिर काम करूंगी, अभी मेरे हालात साज करनी, अभी मैं परफेक्शन के साथ काम नहीं कर रही तो फिर मैं करती नहीं। नमाज़ पढ़ूंगी तब जब बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ूंगी, कोर्स करूंगी तब जब हालात बड़े अच्छे होंगे, और इसी में ज़िंदगी गुजर के कब्र में हम पहुंच जाते हैं। फिर इसी तरह हमने एक चीज़ देखी थी, इल्ज़ाम तराशी। सब हालात की बिगाड़ दूसरों पर डाल दो, अपनी जिम्मेदारी कर निभाने की बजाय दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम, और खुद अपने आप को साइड पे कर लेना। फिर इसी तरह आठवीं चीज़ देखी थी, कलर ब्लाइंड होना। कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, किस तरह से कलर ब्लाइंड होते हैं कि उनको बहुत बड़ी बड़ी हकीकतें नहीं दिखती, सियाह सफ़ेद का फ़र्क नहीं दिखता, कामयाब हूँ कि नाकाम हूँ, ज़िंदगी कैसे गुजरी पता नहीं, खुश हूँ कि नहीं पता नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं, ये भी है वो भी है। तो ऐसे लोग भी फिर बहुत मुश्किल से आगे पहुँचते हैं। फिर नवीं सोच हमने देखी थी, तारीख सोच, खुटी हुई सोच। आप 10 फायदे की चीज़ों को छोड़कर एक नुकसान की चीज़ को पकड़ लेते हैं, 10 खूबियों को पीछे डालकर एक खामी को पकड़ने लगते हैं, यानी मनफी सोचें होती हैं, और ऐसा बंदा कभी भी खुश नहीं रहता। वो ये सोच लेता है कि अच्छा बस मैं अब ये काम छोड़ देता हूँ फिर मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इसके छोड़ने के आगे कितने अंधेरे हैं। अभी तो ये एक रोशनी की छोटी सी किरण थी जो मुझे बेदार करती है, और अगर ये भी ना रहे तो फिर तो इंसान कोई अल्लाह ही उठाए तो फिर बंदा अपनी जगह से उठता है। फिर इसी तरह 10वीं हमने देखी थी कि मुझे लगता है, मुझे लगता है, यानी ये जो सोच होती है ना कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये ख्याल है, मुझे ऐसे है, मुझे ये कमरा बुरा लग रहा है तो ये बुरा ही होगा, चूंकि मैं ये हूँ, मैं लूज़र हूँ, मैं नर्वस हूँ, तो फिर ऐसी सोचों वाला बंदा आगे नहीं जाता। इसी में आज आप हम 11वीं चीज़ देखेंगे और वो क्या है, सब मेरा कसूर है। बस दफ़ा कुछ लोग ये जुमला बहुत बोलते हैं, सारी नाकामियाँ, सारी कमियाँ, सारे बिगाड़ की वजह मैं हूँ। तो याद रखिए ये दुश्मन सोचों का इंतहाई कारगर हरब है कि खुद को मलामत करने पर इतना उकसाना कि इंसान का कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, आखिरी हदों तक ले जाना। यानी इल्ज़ाम तराशी से बिल्कुल बरक्स रवैया है ना। इल्ज़ाम तराशी क्या थी कि आप सारा इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे हैं और सब मेरा कसूर कह के सारे इल्ज़ाम आप अपने ऊपर रख रहे हैं। आप कह लीजिए कि आप अपनी तोपों का रुख अपनी ही तरफ फेर देते हैं, सारा अपना गोला बारूद खुद को उड़ाने में इस्तेमाल कर देते हैं। इस सोच को आप जिम्मेदाराना सोच नहीं कह सकते। जिम्मेदारी लेने वाले की सोच ऐसी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि जिम्मेदारी लेना जो होता है ना, एक सेहतमंद रवैया है, जबकि खुद मलामती काबिले मजम्मत अमल है। जो खुद को मलामत करेगा, बताइए क्या वो जिम्मेदारियां लेगा? शैतान तो उसके दिल को ऐसे भपक से उड़ा देगा, वो कहेगा नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम बेकार हो, तो बेहतर है दूसरों का नुकसान ना करो। हालांकि उसको ये नहीं पता होता कि उसने तो कुछ करना सीख ही लिया है, और जिस चीज़ को सीखने के बाद वो नहीं कर पा रहा और वो काम उससे नहीं हो रहा, कोई दूसरा एक अनजान नया बंदा उसको कैसे कर सकता है? तो ये शैतान का हरबा होता है हमारी नेकियों को हमसे दूर करने का। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिम्मेदारी लेने के बाद आप तब्दीली के लिए कदम उठाते हैं, जबकि खुद को लानतान करने के बाद आप हालात के सामने हथियार डाल देते हैं। नोट करें, आपने जिम्मेदारी ली, आपने खुद को बदलने की कोशिशें शुरू कर दी। आई विल डू, मैं चेंज होंगी, मैं अपने हालात से जंग करूंगी, मैं सर्वाइव करूंगी, मैं अपनी आदतों को बदलूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, दिन ब दिन बेहतरी ही आएगी ना। लेकिन जब आप खुद को लानतान करते हैं ना, तो आपका बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं करता, आप किसी को शक्ल नहीं दिखाना चाहते। ऐसे अंधेरे आपके ऊपर छाते हैं डिप्रेशन के, कि आप उसकी तारीकियों से फिर निकल नहीं पाते, और फिर एक से एक चीज़ बिगड़ती है। याद रखिए कि तकलीफ या मुसीबत तनहा नहीं आती। सर में दर्द होगा तो उसके साथ मैदे में भी शुरू हो जाएगा, मैदा ख़राब होगा तो साथ ही उससे गुर्दे भी ख़राब होंगे, गुर्दे ख़राब होंगे तो जिस्म के दूसरे हिस्से भी ख़राब होंगे। तो जब हम सीधे चलते हैं ना, हमारी सारी चीज़ें सीधी चलती हैं। जब हमारी सोच टेढ़ी होती है ना, तो हमारा पूरे का पूरा जिस्म उसके मुताबिक चलने लग जाता है। खुद एतमादी की जंग में पहले से हारे हुए शख्स की सब मेरा कसूर है की सदाएं इसके हौसलों के पर हच्छे उड़ा देती हैं। कौन है ये शख्स? जो खुद एतमादी की जंग में हार गया। ठीक है, पहले एतमाद कोई नहीं था, कॉन्फिडेंस पहले कोई नहीं था। और ख़ास तौर पे याद रखिए, सब मेरा कसूर करने कहने वाले लोग वही होते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। कुछ लोग इसके ऑपोजिट होते हैं, वो कहते हैं मेरा कोई कसूर ही नहीं है। लेकिन ये कौन लोग हैं? दबे हुए बेचारे, पिसे हुए, लोगों ने कभी आज तक उनको एडमिट ही नहीं किया, हमेशा लोगों की बात सुनकर दब जाने वाले लोग। फिर आखिर इनके दिल में ऐसी बातें शैतान डालता है कि अब तुम तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते। इसे लगता है कि अब वो किसी काबिल नहीं रहा। खुद मलामती बिलाखिर खुद अजियती में बदल जाती है। ये जुमला लिख लें, खुद को मलामत करते करते बंदा खुद को अजियत देने लगता है। और इट्स ट्रू। फिर ऐसे लोग बाज़ दफ़ा खुद को काटते हैं, बाज़ दफ़ा अपना नुकसान करते हैं। उनको पता होता है मेरी चीज़ गिर रही होगी तो गिरने दो, टूट रही है टूटने दो, बच्चा रो रहा है रोने दो, खाना नहीं पका ना पका मैं क्या करूं। यानी इस तरह की एक बेहिसी छा जाती है इंसान पे कि जिंदा होते हुए भी वो एक मैयत बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता एहसास नदामत एक नफसियाती बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, आपसे अमल की ताकत छीन लेता है। आखिर में अब खुद को नहत्ता करके मार ही तो डालते हैं। ये भी सच है। हमेशा याद रखिए, शैतान हमें बेअमल करना चाहता है, ना अपने काम के ना लोगों के काम के। फिर सेल्फ पिटी, तुम क्या करोगी, छोड़ो, ये है वो है। और ऐसा शख्स फिर तन्हा मरता है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, जब मिलती हूँ दुनिया में, उनके रिसोर्सेज देखती हूँ, मैं दंग रह जाती हूँ। मैं कहती हूँ इतना कुछ है इनके ऊपर, बस इतनी नेमतें, इतना बड़ा घर, इतनी गाड़ियाँ, इतना पैसा, इतना फेम, कर क्या रहे हैं? दो बच्चे पाल रहे हैं, दो बेटियाँ जवान, वो खुद भी अब पल गई हैं, अब वो आपके पालने के मोहताज नहीं। पर आपका सुबह से शाम तक हम और गम, उस बड़े से घर की टेक केयर, वो चार छह गाड़ियों की मेंटेनेंस और हर वक्त के इश्यूज, अब उधर कार्ड नहीं, उधर नहीं, गाड़ी नहीं, इंश्योरेंस नहीं, वो नहीं, या कुछ शॉपिंग, ग्रोसरी, और फिर ढेर सारा खाना पकाना। क्या अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा किया था? ये बच्चे तो खुद ही पल के खा जाएंगे, अब तो खुद ही खाने के लायक हो गए, अब इनको आपकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन लोग एक बहुत बड़े मकसद के बगैर जीकर खुद को जाया कर देते हैं। खुद से पूछ लें कि क्या मैं एक मकसद के लिए जी रही हूँ कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खोई हूँ। अपने फैसलों से आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। बामकसद जीने वालों का हर फैसला बड़ा फैसला होता है, और बेमकसद जीने वाले छोटे छोटे गमों में और छोटी छोटी खुशियों में ज़ाया हो जाते हैं। अगर किसी शख्स के अंदर ख्वाब मर जाएं, तो मेरे नज़दीक वो जिंदा लाश ही है। यानी आपको ख्वाब ही नहीं आते, ना जागती आंखों से ना सोती आंखों से, आपको इंसान है। आप में और इस कुर्सी में क्या फर्क है? जिस इंसान को ख्वाब देखने नहीं आते ना, समझ लीजिए कि वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं सोचती हूँ कि खुद ख्वाब देखने वाले आगे बढ़ते हैं, और ख्वाब दिखाने वाले दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। दुआ करें कि कोई ख्वाब दिखाने वाला शख्स हमारी जिंदगी में रहे, वरना हम तो कभी के अपनी जगह पे मुतमईन और मसरूर बैठे होते, और आहिस्ता आहिस्ता उससे भी दिल उचाट हो चुका होता। जिंदगी के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं ना, जो बड़े बड़े गोल होते हैं, ये हमें मुतहरिक कर देते हैं। हम अपनी जगह बैठे होते हैं आराम से, उठने की हिम्मत नहीं, लाइट भी नहीं जला रहे, पाँव को ठंड भी लग रही है, उठ के सॉक्स नहीं पहन रहे। इतने में एक कॉकरोच हमारी ज़मीन पे सामने दिखता है। हमें ज़मीन पे कॉकरोच दिखता है जो हमारी तरफ आ रहा है। फिर देखिए कहाँ से हिम्मत आती है, फिर कहाँ से एनर्जी आती है। क्योंकि एक गोल आ गया, एक सामने दुश्मन खड़ा है। तो वो लोग यकीन कीजिए कि मुर्दा लाशें हैं, जो सुबह उठ के नाश्ते पानी खाने ग्रोसरी से लेकर रात के बेड पे जाने तक अपने जाती छोटे छोटे कामों में खोकर खुद को जाया कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कोई ख्वाब नहीं देखा। बस उनका यही ख्वाब था, शादी हो जाए हो गई, बच्चे हो जाए हो जाए, मियाँ अलग घर ले लें मिल गया, ससुराल से जुदा जुदा खत्म, जॉब मिल जाए मिल गई, मियाँ घर में ग्रोसरी ले हो गई, दैट्स इट। अब उनके सारे ख्वाब पूरे हो गए, अब उन्होंने करना क्या जी के? फिर वो अपने आप को जाया करते हैं बेकार के मशगलों में। सब मेरा कसूर है कि मरस में मुब्तला लोग इन नतायज का गुनाह भी अपने सर ले लेते हैं, जिनसे उनका सिरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। जी, हर चीज़ आप कैसे गलत कर सकते हैं? क्या आप बहुत काम करने लेते? क्या दुनिया का हर काम आप कर रहे थे जो आपने गलत किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। तो फिर सब मेरा कसूर कैसे? मेरा तो उतना कसूर होगा जितना काम मेरे जिम्मे था और मैंने नहीं किया। बस जब आप देखिए आप खड़े होते हैं, आपकी गाड़ी बिल्कुल खड़ी है अपनी जगह, कोई दूसरा आके टक्कर मार जाता है, तब भी गाड़ी में डेंट पड़ता है। एक सूरत है कि आपने किसी को टक्कर मारी तो भी आपकी गाड़ी को हुआ। तो ज़रूरी तो नहीं कि हर हादसे में आप ही का कसूर हो। खड़ी गाड़ियों वालों का क्या कसूर है? दूसरे की गलती भी बाज़ दफ़ा इंसान को नुकसान में मुब्तला कर देती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इनका एजेंडा एक ही होता है कि खुद को सर उठा के जीने के काबिल नहीं छोड़ना। तो खुलासा क्या है इस बात का कि हर काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे हम, सब मेरा कसूर है ये कहकर खुद को फारिग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझा दूँ, सब मेरा कसूर है कहकर इंसान फिर इस्लाह के लिए चल पड़े ना, तो इंशाल्लाह फायदा होगा। इसको मुहासबा कहेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, वाकई अल्लाह ताला मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, और कुछ नहीं है तो ये मेरे किसी और गुनाह की सज़ा ज़रूर है। इस मामले में तो वाकई मैं सच्ची हूँ, लेकिन मेरा कोई और मामला बिगड़ा हुआ था, मुझे पता चल गया आपने उसकी सज़ा मुझे इधर दे दी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर सब मेरा कसूर है कहकर आप चाबियाँ फेंकते हैं और आप कहते हैं ये पकड़ें फाइलें आज से ख़त्म, क्योंकि सारा काम ही मेरी वजह से नहीं हो रहा, आप कर लें, तो याद रखिए ये फरार है और शैतान आपकी नेकियों को लूटता है। बस आप कोर्स कर रही हैं ना? नहीं हो रहा, सर्दी है, हालांकि कोई नहीं है मेरे हिसाब में, बर्फ़ है तो क्या हुआ? जिस रब ने बर्फ़ दी है उसने बर्फ़ के इंतज़ाम भी दिए हैं, जिसने सर्दी दी उसने सर्दी का इंतज़ाम दिया। इन हालात में तो बंदा बहाना ढूंढता है कि कोई मुझे कुछ कहे और मुझे बुरा लगे और मैं उसके हाथ में चाबी देकर चल पड़ूं। संभालो जी, कर लो जी। याद रखिए कि सहाबा की तबूक तो एक ही दफ़ा आई थी ना, लेकिन एक ईमान वाले की जिंदगी में हर साल तबूक आती है। मौसमों की शिद्दतें, हालात की सख्तियाँ, कभी शौहर का मूड बिगड़ गया, कभी घर वालों ने कुछ कह दिया, कभी किसी का मिजाज बिगड़ गया। जब आपके साथ कोई ऐसा मामला है, वल्लाही, तो ये आपकी तबुक है। छोटी है कि बड़ी है, ये अब आप जाने। मैंने तो जिस नबी का रास्ता देखा है, उनको तो कभी किसी चीज़ ने काम से नहीं रोका था, ना गर्मी ने, ना सर्दी ने, ना खुशियों ने, ना गमों ने, ना करीब की चीज़ें, ना दूर की चीज़ें। वो तो ज़िंदगी से एक ऐसा भरपूर हिस्सा अपना डाल कर गए कि 1400 साल गुजर गए, आज तक कोई उनको बीट नहीं कर सका। तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं? मुझे अपना मुहासबा करना है। अगर वाकई मैं चाहती हूँ वही तब्दीली आए मेरी वजह से, जो नबी सल्लम की वजह से आई, चले वो नहीं किसी हद तक उस जैसी, तो फिर तरीका, अमल, कोशिशें, ये सब कुछ होगा। इस तरीके से आप अपने आप को देखेंगे कि आपको हकीकत में फिर अपना आप छोटा लगेगा, और ये चीज़ें किसी और के सिखाने से नहीं आती। आप कहते हैं कोई सिखाता है तो हमें बात समझ आ जाती है, और आप कहते हैं कि कोई सिखाता नहीं तो बात नहीं समझ आती। आप बताएंगे तो पता लग जाएगा, आप नहीं बताएंगे तो पता नहीं लगेगा। तो याद रखिए, कभी भी किसी दरख्त को बाहर के सहारों के साथ आप खड़ा नहीं रख सकते। कब तक? मुझे सहारा समझने वालों, अगर मैं लड़खड़ाया तो किधर जाओगे? हमेशा खुद से पूछें, कब्र में तन्हा, हशर में तन्हा, रब के सामने जवाबदेही में तन्हा, तो फिर दुनिया में मुझे नेकियों के लिए किसी और के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं और आप अपना मुहासबा करें। इस जिंदगी ने तो गुजर ही जाना है, कुछ ले लें। गुजर गई ना इतनी, और गुजर जाएगी। लेकिन जो बात आपको अभी इधर इस वक्त यहाँ क्लास में बैठ के समझ आती है ना, इस क्लासरूम से बाहर बैठे हुए और को नहीं समझ आ रही, और जो स्कूल से बाहर है उनको तो बिल्कुल आपकी ये बात बेवकूफ़ी की लगेगी। जो लोग करते हैं वो करना आसान लगता है, वक्त के रुख से हट के चलने वाले ही असल में वो लोग होते हैं जिनको फिर बाद में लोग राहबर और रहनुमा समझते हैं। तो अगर उम्मत मुस्लिमा ने हकीकत में इस दुनिया की राहबरी का काम करना है, तो फिर अपने हालात से जंग जीतनी पड़ेगी, और बाहर की जंगें बहुत आसान है जीतनी। शर्त एक है कि आप अपने अंदर को जीत लें। जस्ट कॉन्कर योर सेल्फ, पहले खुद को तो फतेह करें, फिर दूसरों से भी होंगे। अगर आपसे आपका बच्चा नहीं डरता, तो आपसे माशरे के बड़े बड़े लोग कैसे डरेंगे? दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इन सारी चीज़ों से फ़ायदा लेने वाला बना दे। अल्लाह हमें ज़ाया होने से, दिन रात ये दुआ करें। आज के सेशन के बाद ये दुआ आजकल मेरे दिल में इतनी कसरत से आ रही है कि अल्लाह ज़ाया ना करना, अल्लाह उम्मते मुस्लिमा को ज़ाया ना करना, अल्लाह इन बच्चों को ज़ाया ना करना, इन रिसोर्सेज को ज़ाया ना करना। आप इमेजिन करें, खुद से पूछें, मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, चले मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन है, क्या कोई नया फैसला करूँगी, किसी चीज़ का स्टैंड लूँगी, कोई नई चीज़ खरीदूँगी, कोई नया सौदा करूँगी? नहीं, ज़िंदगी के आखिरी दिन है। क्या करेंगे आप? एक ही सौदा करेंगे जिसकी वहाँ कदर आएगी। एक वीडियो आजकल काफ़ी ज़्यादा आम हो रही है, इधर हमने, मैंने कई दरसों में भी दिखाई, अली बनास नाम है गलबन लड़के का। उसको डॉक्टर्स ने 4th स्टेज के कैंसर की खबर दी, तो हॉस्पिटल में था तो किसी ने उसका इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू आज एक वीडियो की सूरत में आप खुद भी जाके देखिएगा। अगर आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे जाकर गिफ्ट ऑफ कैंसर लिखेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। 9 मिनट की शायद वीडियो है, आप उसको देखिए कि जब वो सवाल करता है उससे शख्स के, बताओ जब तुम्हें ये पता चला कि तुम्हें 4th स्टेज का कैंसर है, तो तुमने उसके बाद क्या किया? फिर वो जो बातें बताता है ना, उसको सुनकर तो इबरत आती है ना। कहते हैं, मैंने अपना करोड़ों का बिजनेस था वो बेच दिया, मैंने अपनी सब चीज़ें या तो डोनेट कर दी हैं या उसका कुछ ना कुछ यूज़ कर दिया। $2 लाख की गाड़ी फरारी जो उसके इस्तेमाल में थी, आपको तक है 2 लाख डॉलर कितने क्रोन होते हैं? मेरा ख्याल आपके 16 लाख क्रोन, 60,000 डॉलर्स की एक ब्रेसलेट। अब आप उसको 8 से ज़रब देते जाएं तो वो क्रोन बनते जाएंगे ऑलमोस्ट। 3,000 2,000 डॉलर का एक जूता, और उसके घर में ऐसे जूतों के डब्बे रखे हुए थे कि जैसे किसी शोकेस में पड़े होते हैं, डब्बों समेत ब्रांडेड जूते। रफ जूती जिसको आप हवाई चप्पल कहते हैं ना, वो 700 डॉलर की थी उसके घर में। ग्लासेस, चीजें सब दे दिया। फिर उसने कहा कि अब तुम जब किसी के पास कोई ऐसी गाड़ी देखो, कुछ देखो, तुम्हें क्या फील होता है? तो कहने लगा, वल्लाही कुछ भी नहीं, हम एक धोखे में हैं। फिर उसने उसको कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अल्लाह से मुलाकात का इंतज़ार करता है, अल्लाह भी उसका इंतज़ार करता है। तो अली, तुम्हें शौक है कि तुम अल्लाह को मिलो या मर जाओ? खौफ तो नहीं आता? फिर उसने अपना ख्वाब सुनाया कि मैं ख्वाब में कहीं बहुत ऊपर पहुंच गया, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं रो रहा था और मैं ये सिसकियां ले रहा था कि अल्लाह ने मेरी रूह क्यों कब्ज नहीं की। यानी वो इंतज़ार कर रहा है मलकुल मौत का, अल्लाह उसको सेहत दे दे, अल्लाह ताला कादिर है, हमारा ईमान है इस पे भी। लेकिन जो हकीकत कैंसर की खबर सुन के खुलती है, हम क्या हम उसको अपनी ज़िंदगी में वैसे ही नहीं ला सकते? फिर उसने कहा कि मैं कुछ दिन पहले कब्रिस्तान गया था और उसका कोई दोस्त या कोई मिलने वाला इसी बीमारी से मरा था। तो कहते मैं खुद कब्रिस्तान में गया और मैं वहाँ जाकर उसकी जगह पे खुद को देख रहा था। तो उसने तो सोच लिया, अब हम अपने आप को सोच लें। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियों के मामले करें। किसी के कहने से नेकियां कोई नहीं होती, बोझ लगती हैं, सवार हो जाते हैं सर पे, पीछे ही लग जाते हैं। इनको एक ही काम है, आज जो सोचें दिमाग में आती है ना किसी के लिए, कल इन्हीं की वैल्यू होगी। क़यामत के दिन हम ऐसे ही दोस्तों की कदर कर रहे होंगे कि जिन्होंने पकड़ पकड़ के हमें खींचा था। दुआ कीजिए कि कोई आपको खींचने वाला बना रहे, कोई तो हो जो आपको पकड़े और आप ऊपर आ जाए, वरना तो नफ्स इंसान को पस्तियों में डालता है और अल्लाह ताला हमें ज़ाया होने से बचाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर।
अगर कुछ पीछे जा रही हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी ये नेमत रखी है कि हमें भी कोई कहने वाला है, हमें भी कोई खींचने वाला है और हमें भी कोई उभारने वाला है नेकियों के कामों के ऊपर। तो अल्लाह सुब्हानहु तआला बेहतरीन जजा खैर दे सास जी को, हमेशा खैर फाही के साथ ही हमारे साथ उन्होंने मामला रखा। आंटी जी, आज इसलिए नहीं पूछ सके सवाल, जो कुछ था किसी का पूछने वाला, कि सर जी के पास टाइम पहले किसी वजह से लेट हो गया ना, टेक्निकल प्रॉब्लम के से। इंशाल्लाह ताला ये सेशन रोज हुआ करेगा, तो फिर जब भी मौका हुआ तो फिर इंशाल्लाह ताला हम पूछ लेंगे जी। आप में से अगर कोई कोई बात शेयर करना चाहता तो हाथ खड़ा करें। कोई एक दो लोग पर आपने उस वक्त कोई बात शेयर नहीं की थी, अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कर दें। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। हाँ जी, सवाल ये है कि एक मिनट में उस जगह लिखते थे कि सवाल ये है कि वो मंगल का और सॉरी सोमवार का और जुमेरात का रोजा जैसे रखते हैं, तो अगर उसकी जगह बताओ हम सवाब की नीयत से रखते हैं तो उसकी जगह हम अपने वालदैन के हिस्से के रोजे रख सकते हैं उन्हीं दिनों में, यानी कि सोमवार को और जुमेरात को तो वैसे सवाब की नीयत से सुन्नत के तौर पे रखते हैं ना, तो अगर अपने वालदैन के लिए जो रोजा रखते हैं रखना हो तो उन दिनों में रख सकते हैं जी। पर ज्यादा बेहतर है या फिर उसको दूसरे दिन फर्ज रोजे? हाँ जी, उनके फर्ज रोजे हैं जो ये रखना चाह रही है ना। हाँ जी, पर आप कुछ कह रहे थे जी? रख सकते हैं, रख सकते हैं। जजाकिल खैर सर जी। बिल्कुल, बिल्कुल, कि अल्लाह की मोहब्बत ही है जो हमसे काम करवाती है, और नेकी के ऐसे काम के जो उसके करीब कर सके। जी नौरीन जी, आप ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। सही काम जानती जी, आप कुछ कीजिए। हाँ जी, ख्वाब जो है वो तहरीक दिलाते हैं ना। और मुझे सबसे ज्यादा जिस जुमले ने हिट किया, जिसके ऊपर अभी बाकी सब हम थोड़ा बहुत मिल के मौका टाइम थोड़ा इसलिए नमाज के लिए उठेंगे, मगर मुझे जिस जुमले ने बहुत ज्यादा आज के पूरे सेशन में, जिसको कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजों के लिए नए के लिए रास्ता खड़ा, वो ये है कि जो बामकसद लोग जीने वाले होते हैं ना, उनका हर फैसला बहुत बड़ा होता है। तो हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारे छोटे छोटे कदम है, छोटे छोटे फैसले हैं, पता नहीं, मगर अगर उसके पीछे मकसद बड़ा है ना, तो हमारा वो छोटा फैसला भी बड़ा ही है। तो बस अपना अपने आप को बामकसद बनाना है, और वही बात है कि जाया नहीं करना। अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियत दी है, हमसे उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, हमसे उन चीजों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि जो सलाहियतें हमारे अंदर है ही नहीं है। तो जो सलाहियतें हैं उनको अच्छे तरीके से पहचानना और फिर उनको अल्लाह के रास्तों में लगाना, असल चीज ये है बड़ी ना, इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अभी आप लोगों की नमाज है, नमाज के बाद फिर जो बाकी की क्लास है वो आपकी होगी। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।